पहले हम सबके बीच आदरणीय गीता बहन जी है, हम एक हाथ की ताली से आपका बहुत 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 हार्दिक स्वागत करते हैं। आदरणीय गीता बहन जी बाबा के उन गिने चुने बच्चों में से एक है जिन्हों के द्वारा बाबा ने बहुत सारी आत्माओं को नया जीवन दिया है, नया जन्म दिया है। आपकी वाणी का ओज ऐसा है जो अपने में प्रवाहित कर लेता है और बाबा का बन जाता है। आपकी नम्रता, आपकी मिठास यज्ञ में बहुत प्रकार की सेवाओं के लिए आपको निमित्त बनाए हैं। गीता बहन जी को यज्ञ में 45 से भी अधिक वर्ष हुए हैं, जबकि समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तमान समय बेहद महायज्ञ में शिविर, भट्टियों के क्लासेस, देश विदेश में जाकर के बाबा के बच्चों को प्रोत्साहित करना, सकाश देकर शक्ति भरना और नए नए बाबा के बच्चों को बड़ी मीठी भाषा में ज्ञान सुना देना, ये आपकी बहुत बड़ी विशेषता रही है। कुमारियों की ट्रेनिंग में आपका अहम रोल रहता है। पीछे अभी रतन मोहिनी दादी जी के साथ साथ इस कारोबार को भी आप संभाल रही हैं, साथ ही बिजनेस विंग की आप मधुबन कोऑर्डिनेटर के रूप में भी सेवाएं दे रही हैं। बहुत सारे मल्टीफोल्ड एक्टिविटीज में आदरणीय गीता दीदी जी अपना बड़ा सक्षम योगदान दे रही हैं। आज आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, जबकि ये समय स्वयं की स्थिति को मजबूत बनाने का है, तो स्थिति को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक बल क्या है, कैसे प्राप्त किया जाए और प्राप्त करने के बाद उसको सस्टेन कैसे किया जाए, तो इस विषय पर आदरणीय दीदी जी प्रकाश डालेगी आदरणीय गीता बहन।
ओम शांति। आप सभी भाई बहनों का मधुबन में हार्दिक स्वागत है। खास उड़ीसा से मधुबन आप सब आए हैं तपस्या के लिए। शायद कल रात को ही पहुंचे न? कितने दिन का सफर करना पड़ता है? है? 3 दिन? तो वैसे ही तपस्या हो गई आपकी तो। बहुत अच्छा। और खास कमलेश बहन जी और सुलोचना बहन जी भी आपको लेके आए हैं। वहाँ गर्मी है या ठंडी है? और यहाँ देखो आपके लिए खास बादल आए हैं आज तो हा? इतने दिन तो यहाँ भी बहुत धूप थी, पर कल से हम देख रहे हैं मौसम बदल रहा है। बदलते मौसम में तकलीफ भी होती है, आनंद भी आता है है ना? संगम युग का अनुभव है ना सबको? संगम युग महापरिवर्तन का युग है, चेंज का पीरियड है। और चेंज का पीरियड हमेशा कहते हैं ना, चेंज इज ऑलवेज पेनफुल। एक ही रीति से चलते रहना सहज है, पर कुछ परिवर्तन करना, उसके लिए नया सीखना, सीखा हुआ भूलना, नया मेहनत करके अपनाना, तो मेहनत लगती है ना? तो इसलिए बाबा कहते हैं संगम युग पुरुषार्थ का भी युग है, लेकिन साथ साथ पुरुषार्थ बाबा ऐसा सिखा रहे हैं प्रत्यक्ष फल का भी युग है। भक्ति में तो सुनी सुनाई कथाएं सुनते हैं, तो बुद्धि को आत्मा को कोई तकलीफ नहीं है, है ना? मालूम है कि कथा क्या है, शुरू से आए, आधे में आए, अंत में आए, पर पता चलता है कि कहानी क्या है, तो कोई तकलीफ नहीं है। क्योंकि कहानियां हैं, और संगम युग में तो क्या है, संगम युग में क्या है, भक्ति में तो कहानियां है, संगम युग में पढ़ाई है, ज्ञान है। तो ज्ञान तो सिस्टम से समझना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ता है। फर्स्ट लेसन भी मिस हो जाए तो नेक्स्ट लेसन समझ में आएगा नहीं, तो बड़ा अटेंटिव रहना होता है ना? तो नेचुरली थोड़ी मेहनत लगेगी ना? अटेंशन देना होता है। अच्छा, वहां सुनना है, समझने की तो बात ही नहीं है, है ना? प्रश्न करने की बात नहीं है। भक्ति में कुछ प्रश्न करो तो कहेंगे संशय बुद्धि है। शास्त्र वचन सत वचन करके मान लो ऐसा सिखाते हैं, और यहां तो हर बात हमें समझनी है, सिर्फ सुननी नहीं है परंतु समझनी है। इसलिए बाबा पहले ही महावाक्य में मुरली में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मुरली में आप रोज सुनते हैं कि मीठे मीठे बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, समझाते हैं, सुनाते हैं ऐसा नहीं, परंतु समझाते हैं। अब हर बात समझनी है तो बड़ा ध्यान देना पड़े, है ना, ध्यान से सुनना पड़े, समझना पड़े, तो नेचुरली पुरुषार्थ समझ कर सिर्फ बुद्धि तक नहीं रखना है, समझ कर बेशक बुद्धि में धारण करना है, याद रखना है। इंसान आगे आगे पढ़ता जाए और पीछे पीछे भूलता जाए तो चलेगा? हाँ नहीं, पढ़ाई तो याद रखनी पड़ती है ना, क्योंकि एग्जाम होती है, पढ़ाई माना एग्जाम। याद रखेंगे तो पेपर में जवाब लिखेंगे ना, याद नहीं रहेगा तो प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे? तो याद भी रखना है। कथा में तो कहते हैं ना, विवाही कपड़े झाड़ के आ जाते ऐसे कहते हैं, पर यहां तो हमें याद रखना है, और याद तो तभी रहेगा ना, एक तो ध्यान से सुनेंगे, टीचर जो पढ़ाते हैं उनके तरफ अटेंशन रखना पड़े। समझो आप मुझे पढ़ाते हैं तो मेरा ध्यान किधर होना चाहिए? आपके तरफ होना चाहिए। आप पढ़ाएं और मैं इधर देखूं तो चलेगा? हाँ, मुरली में कैसे बैठना चाहिए, है ना? क्यों बाबा कहते हैं कि टीचर के सामने देखो? क्योंकि अटेंशन से देखेंगे तो बुद्धि में बैठेगा ना। ध्यान से सुनना पड़े, देखना पड़े, लिखना पड़े। क्यों लिखते हैं पॉइंट्स हम? बहनें सब लिख रही है ना, बताओ, लिखने से क्या फायदा है? याद रह जाता है ना, लिखने से आधा याद रह जाता है, लिखा हुआ रिवाइज कर सकते हैं, है ना, बुद्धि में तो भूल गया तो फिर मुश्किल है। दूसरों को सुनाते हैं फिर रिवीजन करते हैं, तो ये सब कुछ हम क्यों करते? ध्यान से सुनना, लिखना, रिवाइज करना, ये हम क्यों करते हैं? ताकि हमें याद हो जाए, बुद्धि में ज्ञान धारण हो। पहले तो बुद्धि में धारण करना है ना, बुद्धि में धारण होगा तो कर्म में धारण होगा, तो फिर वहां स्टूडेंट बन के पुरुषार्थ करना पड़े। फिर बाबा कहते हैं सिर्फ बुद्धि तक सीमित नहीं रखना है, कर्म में भी लाना है, आचरण में भी लाना है। हमने मुख से खाना खाया, चबाया, पेट में भरा, इतने से तो काम नहीं चलेगा, फिर आगे क्या होना चाहिए, हजम होना चाहिए, खाया हुआ यूज होना चाहिए, हजम करना माना यूज करना। डॉक्टर कहते हैं ना, वे कटोरी भर के हलवा खाओ सच्चे घी का, मना नहीं है, पर हजम करो, इतना काम करो, श्रम करो, तो मना नहीं है, है ना? हजम करने से भोजन ब्लड में एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो जो ज्ञान बाबा से हम सुनते हैं, बुद्धि में भरते हैं, फिर सारा दिन क्या करना है, हजम करना है, अप्लाई करना है, कर्म में यूज करना है, ताकि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जाए कि ज्ञान कैसे गुण बनता है, है ना? ज्ञान से गुण की धारणा होती है ना, तो ज्ञान का हर सत्य गुण में बदलना है और शक्ति में बदलना है। भई बाबा ने पहली पॉइंट बताई, कौन सी है पहली पॉइंट? हम आत्मा आत्मा भाई भाई है, ये पहली पॉइंट है। तो हमारा अपने आप सबके साथ रूहानी प्यार है ना? देखो, इस ज्ञान की ये पॉइंट धारण करने से कौन सा गुण आया हमारे में? हाँ, हम आत्मा आत्मा भाई भाई है, स्नेह का, रूहानी प्यार का गुण आया ना, नहीं तो हमारे में कितना भेदभाव था कि नहीं? ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये काले हैं, ये गोरे हैं, ये बनिया है, ये ब्राह्मण है, कितना भेदभाव था ना, अंतर था ना एक दो के बीच में। लेकिन बाबा के इस ज्ञान की धारणा से सभी भेदभाव समाप्त हो गए और रूहानी प्यार, आत्मिक प्यार हुआ, तो गुण आया कि नहीं? है ना? ज्ञान का एक एक सत्य गुण धारण कराता है। फिर उसके बाद क्या चाहिए? शक्ति। जो गुण धारण हुआ वो सदा कायम रहना चाहिए। कहते हैं ना कई की भी, वैसे मैं हमेशा शांति से बात करता हूँ, सबके साथ प्यार से चलता हूँ, पर उसने किया ऐसा ना कि गुस्सा आ गया, माना गुण चला गया ना समय पर, बात आने पर गुण छूट गया, तो ऐसी बात हो गई ना कि वैसे तो मेरी बीमारी की दवाई मेरे पर्स में ही रहती है, पर बीमार पड़ता हूँ तब दवाई गुम हो जाती है। ऐसा हुआ ना कि जब बीमारी आती है तभी दवाई गुम हो जाती, बात आई तब गुण चला गया। तो शक्ति चाहिए, और शक्ति कैसे बनती है? बार 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 उस धारणा में स्थित रहने से, उस अभ्यास में बने रहने से फिर मास्टरी शक्ति आ जाती है, कंट्रोल आ जाता है है ना भाई, देखो आप साइकिल सीखते हैं तो शुरू में क्या होगा, गिरेंगे, चोट लगेगी, सब कुछ होगा ना, और फिर धीरे धीरे मास्टरी आ जाती, कंट्रोल आ जाता है। कितनी भी भीड़ में आप अच्छा चला लेते हैं, ऐसे फिर क्या होगा, जब शक्ति आएगी तो कितनी भी बातें हों तो भी हमारे गुण छूटेंगे नहीं। गुण स्थाई रहेंगे, धारणा स्थाई रहेगी, बदलेगी नहीं। और जब अंदर गुण स्थिति शक्तिशाली बन जाएगी तो अपने आप, हम कहते हैं ना भाई, स्थिति बन गई, अवस्था बन गई, उसको अवस्था कहते हैं कि एक शक्तिशाली स्थिरता हमारे में आ गई, दृढ़ता आ गई, अच्छा लड़ोल बन गए, उसको स्थिति अवस्था कहते कि कोई भी बातें हिला नहीं सकती, बदल नहीं सकती, कमजोर नहीं कर सकती। तो एक स्तंभ बन गए ना, पिलर बन गए, हमारे में स्थिरता आ गई, तो स्थिति बन गई। जैसे आपने देखा होगा ना, मकान में स्लैब भरते हैं, देखा है ना, तो जब स्लैब भरते हैं तो कितना स्ट्रक्चर लगाते हैं नीचे, है ना, कितने खंभे लगाते हैं, प्लेट्स लगाते हैं, है ना, कितना स्ट्रक्चर लगाना पड़ता है। जब स्लैब फिक्स हो जाता है फिर क्या करते हैं, स्ट्रक्चर निकाल देते हैं, फिर जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि स्लैब फिक्स हो गया। तो जब वो धारणा फिक्स हो जाती, दृढ़ हो जाती है, मजबूत हो जाती, फिर कोई भी सपोर्ट की जरूरत नहीं रहती, फिर कोई स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, मदद की जरूरत नहीं, अपने आप हम मजबूत रहते हैं। और जब ऐसी आंतरिक मजबूती आती है तो वो हमारे स्वरूप से, चेहरे से, चलन से, हमारे नैनों से, वाणी से, संपर्क से दूसरे को अनुभव में आती है, दिखाई देती है कि भाई ये अनुभव की अथॉरिटी बने हैं। तो हमारा जो संगम युग का पुरुषार्थ है वो कहां से कहां तक का है, सुनने से लेकर के स्वरूप बनने तक का है ना, सुनने से लेकर स्वरूप तक है। और उसके बीच में इतनी स्टेजेस है, सुनना, समझना, स्मृति में रखना, अभ्यास में लाना, अनुभव करना, मजबूत बनना, स्थिति बनाना, स्वरूप बनना, अथॉरिटी बनना, है ना। देखो कितना हमारा पुरुषार्थ चलता है। तभी बाबा कहते हैं कि ये तो जीवन बनाना है। पूछते हैं ना कई, कब तक पढ़ना है आपको, तो हम क्या जवाब देते हैं? हाँ, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, अंत तक पढ़ते रहना है। लोग तो सोचते हैं ना भाई कब आपका पूरा होगा, पर हमारा तो जीवन भर पढ़ाई चलना है। उसका कारण क्या है कि हमें तो सुनने से लेकर स्वरूप बनना है, अथॉरिटी बनना है। तो संगम युग की मुख्य अचीवमेंट अवस्था है, हमारी स्थिति है। भाई हमने स्थिति क्या बनाई है ना, भाई हम अचीव क्या करना चाहते हैं, कि हम एक स्थिति बनाना चाहते हैं, एक ऊंची आत्म स्थिति बनाना चाहते हैं, एक श्रेष्ठ शक्तिशाली शुद्ध आत्म स्थिति बनाना चाहते हैं, जिसको बाबा सरल शब्दों में कहते हैं कि तुमको दिन रात ये फुरना रहनी चाहिए कि हम सतो प्रधान कैसे बने, है ना, हम सतो प्रधान कैसे बने। बाबा कहते हैं तुमको ये अंदर में चितवन लगी रहनी चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान और पढ़ाई का जो लक्ष्य है वो ये दो चीज है। दुनिया में भी लोग कहते हैं धर्म का उद्देश्य है कि इंसान क्यों धर्म पालन करता है, क्यों धर्म को जीवन में स्थान देता है, तो उसके पीछे दो उद्देश्य है, आत्मशुद्धि और परमात्मा प्राप्ति, है ना। क्यों हम धर्म पालन करते, क्यों भक्ति करते, एक है आत्मशुद्धि, सच्ची भक्ति करने वाले सदा भगवान को कौन सी प्रार्थना करते हैं, हमें पतित से पावन बनाओ, विषय विकार मिटाओ, है ना। क्योंकि जैसे ही आत्मा में थोड़ी भी अशुद्धि आई, बाबा कहते हैं ना जैसे ही देह अभिमान में आते हो पवित्रता कमजोर बनती है, तो भगवान की याद आना शुरू होता है। माना आत्मा में जरा भी इम्प्योरिटी आती है तो हम अपने आप में कंफर्टेबल नहीं होते, हमें अपने आप में अच्छा नहीं लगता है, बेचैनी लगती है, है ना। देखो फिजिकली भी थोड़ा भी हाथ पांव गंदा हो तो अच्छा लगता है ना, बिकॉज साफ कर ले, है ना, अच्छा नहीं लगता है, अनकंफर्टेबल लगता है। तो आत्मा जैसे ही देह भान में आती है तो उनको अच्छा नहीं लगता है, वो अपने आप में कंफर्टेबल नहीं है, माना वो बेचैन हो जाती है, अशांति हो जाती है। अब ज्ञान तो है नहीं कि ये अपवित्रता क्यों आई, अशांति क्यों आई, वो तो ज्ञान नहीं है ना द्वापर युग में। इसलिए भगवान को कहते हैं मुझे पावन बनाओ, मेरे विकार मिटाओ, पाप हरो। माना आप देखिए, पहले कोई भी भक्ति अल्पकाल की इच्छा कामना के लिए नहीं करते। आदि भक्ति, अव्यभिचारी भक्ति शुद्धि के लिए करते, कि मुझ आत्मा में जरा भी विकार न रहे। आज भी शायद बाबा ने मुरली सुनी होगी कि सूक्ष्म रूप में भी या अंश मात्र भी अपवित्रता न रहे। जैसे आंख में जरा भी कचरा गिरने से पेन होता है ना, ठीक नहीं लगता, ऐसे मन बुद्धि में जरा भी अपवित्रता आती है तो आत्मा अपना चैन गंवा देती है। अब भक्ति करते रहे उसी ध्येय से, पर सही ज्ञान तो था नहीं, तो आखिर कलयुग के अंत ही पहुंच गए और पतित बन गए। तो बाबा आकर के सत्य ज्ञान देते हैं और वो सत्य ज्ञान पाकर हम फिर नित्य किस बात के पुरुषार्थी हैं? सत्य ज्ञान तो बाबा ने दिया, हमें कोई ढूंढना नहीं है, खोजना नहीं है। भक्ति वालों को तो मेहनत क्यों लगी, क्योंकि सत्य क्या है वही खोजना है बिचारों को, इसलिए उनको तो बहुत हठ दमन तप सब करना पड़ा कि आखिर सत्य क्या है। हम बाबा के बच्चों का सौभाग्य ये है कि हमें ढूंढना कुछ भी नहीं है, है ना, हमें सत्य खुद बाबा ने सारे बता दिए हैं, मिल गया है सबको। बाबा ने हर बात का सत्य हमें बता दिया है, ये अनुभव है सबको, है ना, सब बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, और इस निश्चय के बाद ही पुरुषार्थ चलता है। तो सत्य हमें मिल चुका है, सत्य हमें खोजना नहीं है। बाबा ने एक बार डबल फॉरेनर्स को ये कहा था, डबल फॉरेनर्स का ये नेचर है ना रिसर्च करना, तो बाबा ने उनको कहा था नया कुछ भी ढूंढना नहीं है। वो मिल चुका है, उससे अनुभव में लाना। माना मनुष्य से देवता बनने के लिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए संपूर्ण निर्विकारी आत्मा बनने के लिए जो सत्य ज्ञान चाहिए वो बाबा ने हम बच्चों को बता दिया। साकार मुरलियों में, अव्यक्त मुरलियों में रोज हम रिवाइज करते हैं। अब वो मेहनत नहीं, अब पुरुषार्थ है। मेहनत और पुरुषार्थ में अंतर है ना। पुरुषार्थ माना लक्ष्य पूर्वक अभ्यास करना। क्यों बाबा कहते हैं भक्ति में तुम भटकते थे, क्यों बाबा उसको पुरुषार्थ नहीं कहते हैं? क्योंकि बिना लक्ष्य बिना समझ हम मेहनत करते थे तो उसको भटकना कहेंगे। अनावश्यक मेहनत करते थे तो भटकना कहेंगे। अब लक्ष्य पूर्वक समझ पूर्वक अभ्यास करते हैं, इसको पुरुषार्थ कहते। तो अब हम रोज पुरुषार्थ करते हैं ताकि हम फिर से अपनी असली सतो प्रधान स्थिति प्राप्त कर ले, जिसमें विकार का अंश भी ना हो। बाबा कहते हैं ना, अपवित्रता की अविद्या हो जाए, नेचुरल प्योर हम अपने आप को अनुभव करें। यही तो स्थिति हम एक तो बनाना चाहते। क्यों हम लगे हैं, क्यों हम रोज पुरुषार्थ में लगे हैं? क्योंकि ये मौका है संगम युग में हम बाबा जैसा बन सकते हैं। संपूर्ण परिवर्तन संपूर्ण शुद्धि हम ला सकते हैं। और कोई युग में ये पॉसिबल नहीं है। है और कोई युग में हो सकता है? नहीं, क्योंकि और कोई युग में बाबा आएगा नहीं, सत्य ज्ञान देगा नहीं, और बाबा के अलावा और कोई है नहीं जो हमें बनाएगा। तो ये भी पक्का है ना सबको कि अभी ही हम बन सकते हैं, बाद में कोई चांस नहीं। स्पष्ट है ना सबको कि अभी ही बन सकते हैं। जितना एक्यूरेट परफेक्ट बनना चाहे, संपन्न भरपूर बनना चाहे, अभी ही बन सकते हैं, बाद में नहीं। तो एक तो समय का सिग्नल भी स्पष्ट है, बाबा बनाता है ये भी स्पष्ट है, और दो चीज है। एक तो पूर्ण शुद्ध बनना है और दूसरा दिव्य गुणों से संपन्न भी बनना है। माना बाबा से पूर्ण प्राप्ति करनी है। जो बाबा ज्ञान गुण शक्तियों का वर्षा दे रहा है वो पूर्ण हमें धारण करना है, कि थोड़ा थोड़ा करना है। बताओ, है ना? पूरा धारण करना है ना? और सभी बातों में हम क्या चाहते हैं कि भी पूरा अधिकार मिले, है ना? इनको मिला इनको मिला तो हमें क्यों नहीं, है ना। हम पूरा हिस्सा लेते हैं, माना देखो भौतिक और लौकिक रूप से हम पीछे नहीं रहना चाहते, समान रूप से अधिकार लेना चाहते हैं। तो आध्यात्मिक रूप से क्या करेंगे, पीछे थोड़ी रहेंगे, उसमें भी तो हमें पूरा अधिकार से लेना है, माना पूरा हासिल कर लेना है। तो रोज 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 अपने आप को हमें पक्का कराना है कि पूरा वर्षा लेना है, थोड़े में राजी नहीं होना है। आज कौन सा शब्द बाबा ने बोला ना कि बच्चे कौन सा शब्द बोलते हैं, चलता है ऐसा ऐसे, हाँ बाबा ने कहा ना, ये अलबेलेपन का त्याग करो, चलता है ऐसे ही होते हैं, है ना। माने ये जो एक आदत पड़ गई है ना चला लेने की, ठीक है ठीक है, परफेक्ट करने में अटेंटिव रहना पड़े वो नहीं, परंतु बाबा कहते हैं ऐसा नहीं करना है, अलबेलेपन का त्याग करना है। मतलब पूरी प्राप्ति। तो संगम के अंत तक हमारी ये लगन लगी रहे कि पूरी प्राप्ति करनी है, ये मौका मिला है पूरा लेना है, इसमें पीछे नहीं रहना। जरा भी अलबेला नहीं रहना, अलबेला वो ही रहता है जिसने सभी राजों को नहीं समझा कि ये समय कौन सा है, कौन हमें कह रहा है, ये जो सारे राज है वो राज जो नहीं समझता है वो ही अलबेला रहता है। बाबा ने कहा ना कि 163 जन्मों का उधार चुकाना है, द्वापर से तो हमारा माइनस का खाता चल रहा है ना, तो 63 जन्मों का उधार चुकाना है और 21 जन्मों के लिए जमा करना है, और ये सब कुछ एक जन्म में करना है। वंडर तो ये है कि ये सब कुछ इस एक संगम युगी जन्म में करना है। तो टेंशन की बात तो नहीं है ना, टेंस तो नहीं हो गए कि बाबा एक जन्म में 63 जन्म का चुकाओ और 21 जन्म का जमा करो, बड़ी मुसीबत है ये, तो ऐसा तो नहीं लग रहा है ना, भारी तो नहीं लग रहा है ना भाइयों, नहीं। तो भारी होने की बात नहीं है क्योंकि विधि बहुत सहज है, है ना? बाबा ने विधि युक्ति बहुत सहज बता दी है, आराम से हो सकता है। सत्य साथ है, बाबा साथ है, समय चढ़ती कला का है, तो सहज हो जाता है ना। देखो नदी का प्रवाह इधर बह रहा है तो नैया को इस दिशा में ले जाना सहज है या मुश्किल? सहज है ना? प्रवाह की दिशा में नैया ले जाना सहज है, विपरीत दिशा में ले जाना संघर्ष है, मेहनत है। तो अभी समय का प्रवाह किस तरफ है? चढ़ती कला। सृष्टि बदल रही, कलयुग से सतयुग की ओर जा रही है, तो हमारा स्वयं का बदलना भी मुश्किल नहीं है। समय का साथ और भगवान का साथ, कहते हैं ना, भाग्य का भी साथ चाहिए, भगवान का भी साथ चाहिए। तो ड्रामा भी हमारे फेवर में है, ड्रामा फेवर में है। ड्रामा भी अभी क्या बन रहा है? कलियुगी से सतयुगी बन रहा है। तो ड्रामा भी फेवर में है और भगवान भी फेवर में है। तो बरोबर बताओ, मुश्किल है कि सहज है? नाश्ता किया है कि नहीं? क्या है ना? बताओ, सहज है ना? सहज है। कभी भी मुश्किल नहीं समझना। मुश्किल क्यों भासता है? बात हमारी है बस। सब कुछ फेवर में है, अब बात हमारी है कि मेरा संकल्प सदा मजबूत रहना चाहिए, मैं खुद उस फेवर में आ जाऊं, मुझे घड़ी घड़ी अपना मन बदलना नहीं है, संकल्प बदलना नहीं है, लक्ष्य को ढीला नहीं करना है, कमजोर नहीं करना है ना। हम कई बार लक्ष्य बदल देते, हम ग्रस्त में हैं, हम कैसे बनेंगे? ये समर्पित लोग बनेंगे, मधुबन वाले बनेंगे, कई ऐसे सोचते हैं ना। पर बताओ, सबसे पहला संपूर्ण कौन बना? और वो कौन था? ग्रस्ती था, ग्रस्ती था। कोई कुमार नहीं बना, कुमारी नहीं बनी, कौन बना? ब्रह्मा बाबा, अधर कुमार, ग्रस्ती, हद और बेहद के परिवार वाला बना, इतनी बड़ी जिम्मेवारी वाला बना। तो कभी भी अपने लक्ष्य को कमजोर नहीं बनाने। हम बन सकते हैं, बाबा बना रहा, बाबा बना रहा है। जैसे बाबा बनाते जाएं, ऐसे बनते जाएं। इसलिए बाबा कहते हैं, सिर्फ ज्ञानी नहीं बनना, पंडित नहीं बनना, योगी बनना। योगी माना स्वरूप, स्थिति। बाबा कहते हैं, तुम अच्छे स्पीकर बने हो, ज्ञानी है, अच्छा भाषण करेंगे, बोलेंगे, समझाएंगे। तुम अच्छे स्पीकर बने हो, तुम अच्छे मैनेजर बने। वे आपको 10 सेंट देते हैं, यहाँ प्रदर्शनी करके आना है, आप बहुत अच्छी करके आ जाएंगे, करते हैं ना? अच्छे मैनेजर बने हैं। भाई तुम ये काम करो, ये करो, आप इसमें लगो, हम फटाफट मैनेज कर देते न, हम अच्छे मैनेजर बने, हम अच्छे सोशल वर्कर बने, बहुत अच्छी सेवा करते हैं हम बाबा के बच्चे, पर बाबा हम बच्चों से क्या चाहते हैं, हम अच्छे योगी बने, हम अच्छे योगी बने, वो है स्थिति बनाना, स्वरूप बनाना। बाबा साथ हैं, ड्रामा फेवर में है, सत्य ज्ञान बुद्धि में है, बस हमें दृढ़ता रखनी है, नित्य अभ्यास करना है, तो ऑटोमेटिक हम भी बनते जाते हैं। क्या अनुभव है सबका, बनते जाते हैं ना, स्थिति बनती जा रही है, धीरे धीरे हम नेचुरल बनते जा रहे हैं। पहले मेहनत लगती थी, अब नेचुरल है ना। अवस्था बनती जाती, और ये हमारी संगम युग की अचीवमेंट है, क्योंकि जो स्थिति लेकर हम संगम युग को एंड करेंगे, ध्यान से बुद्धि में रखना, जिस अवस्था के साथ हम संगम युग को पूरा करेंगे, उसी अवस्था के साथ सतयुग को शुरू करेंगे। जिस लेवल पर एंड करेंगे, उसी लेवल से आप सतयुग को स्टार्ट करें। इसलिए सिर्फ बातें नहीं, बनना है, मुझे कुछ बनना है। बाबा कहते हैं ना, कुछ जलवा दिखाना है। संगम युग में मेरी एंट्री, मेरा आना कॉमन नहीं होना चाहिए। भगवान ने तो अपना जलवा दिखाया ना, परमात्मा क्या है वो अनुभव हम सबने किया, तब तो हम उस पर कुर्बान गए ना, वारी गए। कहते ना, तेरा जलवा जिसने देखा वो तेरा हो गया। तो हम हो गए ना बाबा के, क्यों, कौन सा जलवा देखा, उनके प्यार का देखा, उनके सत्य ज्ञान का देखा, उनके रहम दिल का देखा, कल्याण की भावना का देखा, उनकी पालना का देखा, कितना जलवा हम देख रहे हैं संगम युग में। तो अब हमें भी कुछ करके दिखाना है कि कॉमन रहना है, हमें भी कुछ विशेष करके दिखाना है, कॉमन रोल नहीं, मुझ आत्मा को भी संगम युग में विशेष बनना। और विशेष बनना माना दूसरी आत्माएं भी मेरे से अनुभव करें, प्राप्ति करें, अनुभव करें, प्राप्ति करें, तो वो हमें मानेगी ना। इसलिए बेन जी ने टॉपिक रखा कि हमारे संगम युग के पुरुषार्थ का लक्ष्य है ऊंची शक्तिशाली दिव्य आत्म स्थिति बनाना और उसका आधार ये सब है। बाबा का सत्य ज्ञान, समय का साथ, हमारा मजबूत लक्ष्य, दृढ़ पुरुषार्थ, लगन। तो बहुत अंदर जितना बनते जाएंगे ना, उतना आनंद आता जाएगा। बाबा का ज्ञान ऐसी चीज है कि ज्ञान को जितना आप स्थिति में बदलते जाएंगे, उतना आप हल्के खुशनुमा बनते जाएंगे। अगर ज्ञान बुद्धि में पड़ा रहा तो वो भारी लगेगा, बोझ लगेगा, खुशी नहीं। फिर कहेंगे मजा नहीं आता है। उसका कारण ये है कि हम सिर्फ जैसे खुराक पेट में पड़ा रहे तो क्या होगा, तकलीफ करेगा, यूज होगा तो एनर्जी बनेगी। तो सेम वही चीज है, जितना स्वरूप बनते जाएंगे खुद को भी बहुत क्लैरिटी अनुभूति दूसरों को भी प्राप्ति करा सके। ओम शांति।
आदरणीय दीदी जी को हम बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बड़े सरल शब्दों में और पुरुषार्थ की गति को हम कैसे बढ़ाएं और उसको कैसे सस्टेन करके रखें, हम बहुत सहज रूप में इस बात को स्पष्ट किया है। एक बार फिर आप सबकी तरफ से दीदी जी को थैंक्स। अब हम बाबा की याद में बैठेंगे।